ओम शांति। तो छह दिन के लिए बाबा के जो मुरली साकार मुरली का महावाक्य है लाइन, तो उसके लिए छह दिन को यहाँ ले करके सुनाना था, लेकिन अचानक अटैक हो गया, इसलिए जो भी आएगा हम वो सुनाएंगे। तो जो मंडे की मुरली है उसमें बाबा ने बोला सर्विस के लिए नए नए युक्तियाँ निकालो और गांव-गांव में जाके सेवा करो, सर्विस करो, और सर्विस करने के लिए ज्ञान का पराकाष्ठा चाहिए। तो इसमें हमने थोड़ा सा चिंतन किए थे, क्योंकि आज हम सब उस महफिल में हैं। संसार के अनेक प्रकार की मठ पंथ संप्रदाय वाले आत्माएं समाज में व्यापक हैं, इसीलिए आज हम कहीं भी जाके कोई भी बातें सुनाते हैं तो ये नया धर्म मानते हैं लोग। तो इसीलिए नया धर्म मानते हैं तो उनके सिद्धांत के खिलाफ कोई बातें होती है तो लोग अगेंस्ट में आने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं। इसीलिए बाबा ने बोला कि ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई और आपने जैसे कि उस ज्ञान को अच्छी रीति से चबाए होंगे, अपने जीवन में लाए होंगे, उसका ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर हम उस चीज़ को अगर अच्छी रीति से अपने खुद ही खा पी के नहीं निकलते मैदान में, तो दूसरों को सुनाने में जैसे कि उनको सेट नहीं होता ये सब बातें। तो इसीलिए जैसे माँ होती है अपने बच्चों को, जैसे कि 5-6 महीने के बाद उसको कैसे भोजन देना होता है, जो ठोस फ्रूट कैसे देना होता है, वो सब सीखी हुई होती है। हर महीने में उसको डोज बढ़ाती है और भोजन की क्वालिटी भी बढ़ाती है। तो जैसे 12-13 महीने का हो जाता है तो वो भोजन खाने लायक होता है। तो इस रीति से ज्ञान को भी अच्छी रीति से हमने अपने अंदर धारण किए होंगे और सबके साथ और सबके लिए ज्ञान कितना उपयुक्त तो हो सकता है, और किसी को जैसे कि लगे भी नहीं कि हमको कह रहे हैं, हमको हमारे खिलाफ में जा रहे हैं, ऐसा ना लगे, इसीलिए उस ज्ञान को अच्छी रीति से हम सब पहले प्रैक्टिकल में करें और चिंतन से कई तरीके निकालें कि ये चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करने से यहाँ पर क्या रिजल्ट आ सकता है, यहाँ पर ये बातें सुनाने से इनको कैसा लग सकता है। ये पहले से अगर हमारे अंदर में इसका विजन होगा तो फिर हम अपने को अच्छी रीति से पेश कर सकते हैं। इसीलिए हम इस तरीके से अगर ज्ञान सुनाएंगे, इसीलिए बाबा ने बोला कि ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तो ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात ज्ञान को कई एंगल से देख करके उसको फिर जनसमक्ष पेश करना, प्रस्तुत करना, तो फिर उनको भी लगे कि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। अभी तक तो हम सब जो भी ज्ञान सुन रहे थे, सुना रहे थे, वो सिर्फ हम सुनने तक ही रहा हुआ है, लेकिन जो किया हुआ ज्ञान है उनको महसूस हो, इसीलिए इस प्रकार की ज्ञान हमारे अंदर पहले से होने चाहिए। तो मंगलवार की जो मुरली है तो बाबा बाप कल्याणकारी है, किसी भी बात में कल्याणकारी है, इसीलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। ये मंगलवार की मुरली में हेडलाइन में बाबा ने बोला था। तो इसमें बाबा ने क्या बोला कि बाबा कल्याणकारी है, बाबा जब संगम पर आते हैं तो सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। तो बाबा ने कल भी मुरली में बोला था कि कोई निमित्त आत्माएं कल या परसों, कोई निमित्त आत्माएं थोड़ी सी ऊपर नीचे कर भी लेती है, तो डायरेक्शन के महत्व को जान करके आप उस अनुसार चलोगे तो कहीं गलती होता है, कहीं ऊपर नीचे होता है तो भी बाप ठीक कर देंगे उसको। हाँ, तो बाप को सुना करके अपने को खाली करो निमित्त आत्माओं को, उनके महत्व के बारे में बाबा ने बताए थे। इसीलिए बाबा हम सबको कि श्रीमत में कभी भी मन मत मिक्स नहीं करो। अगर श्रीमत में अगर हम मन मत मिक्स करते हैं तो हमारे कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बाबा कल्याणकारी रच करके आए हैं, तो बाबा किसी भी बात में हमारा अकल्याण होने नहीं देंगे। इतना निश्चय और इतना विश्वास अगर हमारे पास में होगा तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, इसीलिए अकल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सबको इस सारी बातों के ऊपर आनाकानी करना, बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा के लिए जैसे कि संशय उठाना, या हमारे लिए है ना, बाबा के बच्चों के लिए कभी भी हित नहीं हो सकता है, अहित हित है ना। हाँ, तो इसमें अभी बुधवार की जो मुरली है, तो बुधवार की जो मुरली में बाबा ने बोला है, इसमें बाबा ने बोला था कि बाप के सिवाय तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए है ना, हाँ, बाप के सिवाय तुम्हारे यहाँ कुछ कोई नहीं है, इसीलिए बाबा ने देव भान से, अच्छा हाँ, बेगर बनने वाली बात थी, तो बाबा ने बोला था हाँ, खाली बन करके कुछ नहीं, हाँ बेगर बनेंगे, बेगर ही प्रिंस बनेंगे। तो इसमें बाबा ने बोला कि ब्रह्म बाबा का जो जो कल भी बाबा ने बताए थे, तन मन धन से, जैसे कि बाप को फॉलो करो तो बाप समान, परम बाप समान सरेंडर बनेंगे, तो इसीलिए तुम्हारा कल्याण होगा। तो प्रिंस बनने के लिए बाबा ने बोला सब छोड़ोगे तो सब पाओगे, यहाँ ये सिस्टम है। संगम विकर बाबा ने बोला कि संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और बाबा के अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है, और बाबा के अलावा दूसरे तीसरे कोई चीज को अगर हमने अपना दिल में छिपा के बिठा के रखे होंगे तो वह कुछ भी नहीं मिलेगा हमको, जो मिलेगा जितना और उतना का हिसाब है संगम पर। तो इसलिए हमने जितना छोड़ा, जैसे वरुण बाबा ने सब कुछ छोड़े तो सब कुछ मिल रहा है, बाबा को मिलेगा 110%। तो इसी रीति से हमने भी इस तरीके से अपने आप को इतना बना के रखे होंगे, सब कुछ जैसे कि बेघर बनेंगे तो प्रिंस बनना सुनिश्चित है, और बेघर में ना घर भी अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं, वो तो है लेकिन बाबा के नाम है उसमें भी, जो कपड़े वे में भी बाबा के नंबर लगे हुए हैं, बाबा के घर से मिले हुए नंबर, रुमाल में भी बाबा के घर के नंबर मिले हुए हैं। इस तरीके से मन से भी बुद्धि से भी दिल से छोड़ा हुआ होगा तो हमको सब कुछ मिलेगा। तो गुरुवार की जो मुरली है, तो मीठे बेचे तुम्हारा अव्यभिचारी याद तभी, हाँ जुटा सकते हैं जब बुद्धि योग देह से देह के सर्व संबंधों से टूटा हुआ होगा। तो बाबा से अव्यभिचारी याद तभी प्यार याद ठहर तभी ठहर सकता है जब हम बाबा को अपना बना के रखेंगे। बाबा को जैसे कि बाबा की याद के अलावा बाबा की बाबा से जो प्यार किया है हम सब ने, तो उसके बीच में कोई मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर हम मिक्सचरिटी हो गई तो याद भी इतना शक्तिशाली नहीं होगा, जो अनुभव नहीं होगा तो अनुभव जा नहीं होगा, तो मन में असंतुष्टता आती है, खाली खालीपन का अनुभव होता है। तो इसीलिए बाबा के सिवाय हमारा कोई नहीं अगले वाली लाइन में जो था, तो इसको आ जाता, यही हमारा पुरुषार्थ, उसको उसको निकालना, उसको हटाना, तो उसके लिए है ना पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्यों आया, किस लिए आया, क्या करने से आया, और किस बात कौन सी बात के बीच में साथ में मिल के आया, तो इसको कैसे हटाना, फुल एक्सपेरिमेंट करके ऐसे साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। दूसरे बारी कितने आए कि नहीं आए, तीसरे बारी ट्रायल करके देखा कितना हमने विजय प्राप्त कर सके, इस तरीके से हमको प्रयोग करना है। तो शुक्रवार की जो मुरली है, बाबा ने बोला अपने सरनेम याद रखो, तुम गॉडली चिल्ड्रेन हो, तुम ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, तुम्हारे मैनर्स बहुत रॉयल चाहिए। तो इसमें बाबा ने बोला कि जो सरनेम अगर हमारे याद में होगा कि दुनिया में भी सरनेम के बल से लोग बहुत बड़े काम करते हैं, जैसे कि राजपूत वाले होते हैं उनको कितना नशा होता है, जो ब्राह्मण होते हैं उनको भी बहुत नशा होता है, जो राजखानदान के लोग होते हैं उनको भी बहुत नशा होता है। तो इस तरीके से बाबा ने हम सबको संगम पर सभी को एक ही सूत्र में बांधा है। और यहाँ पर ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा कुल है, देवताओं से भी ऊंचा कुल है, तो इसीलिए हमारी जो चाल चलन है बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो चाल चलन के लिए बाबा ने बताया कि जो राजा का बच्चा होता है, जो साहूकार का बच्चा होता है, उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से पता चलता है, उसके ठंड वाण से पता चलता है ये कितना धनवान का बेटा है। ठंड वाण बोलते हैं ना, ठाट बाट, वो टोपी उतारने पड़े। तो इस हिसाब से हम सबको अपने बाबा को शो करना है, तो इस स्मृति में हमें रहना पड़ेगा। अगर स्मृति में होंगे तो फिर जितना नशा होगा निश्चय होगा, तो उसी तरीके से माया हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। तो शनिवार की जो मुरली है, तो बाबा ने बोला है कि अपने रॉयल चलन से सेवा करनी है, और बुद्धि को रिफाइन बनाना है, और माताओं को रिगार्ड रखना है। तो इसमें हमने देखा था कि रॉयल चलन से सेवा करने के लिए ये तो एक्चुअल में ज्ञान का सार ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि रॉयल चलन से सेवा करना माना अपना पुरानापन कुछ भी न हो, बाबा की श्रीमत अनुसार ब्रह्म बाप के कदम पर कदम रख करके जो चलते हैं पुरानापन से, जैसे अविद्या हो जाते हैं तभी जा करके वो फिर चलन से चेहरे से सेवा कर सकता है। तो फिर उसमें बुद्धि को रिफाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि तो है ना, सबके जन्म जन्म के हर चीज मिक्स है उसमें, इसीलिए उसको फिल्टर करना पड़ेगा, ट्रिबल फिल्टर बोलते हैं। तो मन में किसी प्रकार की बातें ना आए तो उसको बुद्धि को रिफाइन बोलते हैं। आज दुनिया में रिफाइन तेल होता है, कई सारी चीजें रिफाइन होते हैं, लेकिन बोलते हैं, लेकिन उस समय तो खूब यूज होता है। अभी ज्यादा लोग टैलेंट होते हैं तो उसको कुछ भी कर सकते तो तभी जाकर के अहंकार जब गिर जाता है तभी माताओं बहनों के ऊपर हमारा रिगार्ड का है ना भावना जागृत होती है, और सबको ऊंची नजर से देखते हैं। और जिसके अंदर कोई भी चीज का मान सम्मान और उस नाम मान शान से जो व्यक्ति ऊपर उड़ जाता है और एक बल एक भरोसा होता है, वही दूसरों को रिगार्ड रख सकता है। नहीं तो उसके ऊपर अहंकार जैसे कि हावी होती रहती है और जहीं तहीं वो टांग अड़ाता रहता है। इसीलिए हमको सबसे पहले उस चीज से ऊपर उठना होगा। इसीलिए इस सब बातों को हमें पहले से करके फिर दूसरों को रिगार्ड दे सकेंगे। अपना अहंकार सब जब निकल जाएगा तभी रिगार्ड, जैसे कि बाबा की नेचुरल संस्कार है कि हमारा जो पहले का जो भी पुराना हट जाता है तो बाबा की चीजें हमारे जीवन में नेचुरल आने लगती है। ये थे 6 दिन की मुरली। ओम शांति।
ओम शांति। हमें 6 दिन के प्रश्न और उत्तर रिवाइज करने हैं। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर दें। तो बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, तो बाबा ने पूछा कि इसकी विधि क्या है, आप भी उत्तर दे सकते हैं। घड़ी घड़ी घर को याद करना है, ये देह भी क्या है? हाँ, देह से बेघर होना है, और इस दुनिया में रहते हुए अवस्था परिपक्व बनानी है, और इस देह सबसे हिसाब किताब चुप्त करना है। हाँ, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई, इसमें क्या अंतर है? प्राप्तियां कौन सी है? उसमें प्राप्ति होती है कि कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है कृष्ण के भगत को, और पढ़ाई में क्या होता है? हाँ, उनको सिर्फ साक्षात्कार होगा लेकिन वो उस कृष्ण की दुनिया में जा नहीं पाएंगे, और हम यहाँ पढ़ाई पढ़ेंगे तो हम उस दुनिया में जाएंगे। अगला प्रश्न है, ड्रामा की जो यथार्थ नॉलेज है वो कौन से ख्यालात को समाप्त कर देती है? बीमारियों की, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ऐसे नहीं होता तो ये जो ख्याल चलते हैं, अगर हमारे पास ड्रामा की नॉलेज है तो इन सब प्रश्नों से हम पार हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन से पॉइंट याद आएंगे उस समय कि ये कल्प पहले भी हुआ था और हाँ हाँ, तो ये ड्रामा की अलग अलग पॉइंट्स हमारे पास लिखी हुई होगी। तो हम जब ऐसी परिस्थिति आती है तब ऐसे जो प्रश्न है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, ड्रामा की 30 पॉइंट। पहली पॉइंट है कि ये कल्प पहले भी हुआ था, ये कल्प पहले भी हुआ था। फिर मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। हाँ, ये तो तीसरा, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, किसी पर अन्याय हो ही नहीं सकता, ड्रामा अटल है, ये होना ही है। हाँ, नथिंग न्यू, ये कुछ नई बात नहीं है, जो हो रहा है पुराना ही है, नया नहीं है, नथिंग न्यू। यह जो ड्रामा है भगवान को पसंद है, और ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सेम नहीं है। ड्रामा में स्वयं भगवान भी बंधा हुआ है, इसलिए उसको मस्का लगाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। ड्रामा ट्रुथ है, सत्य है, सत्य। ड्रामा अनादि है, अविनाशी है। ड्रामा 5000 वर्ष का है। ये ड्रामा जो है, ड्रामा में हर एक एक्टर निर्दोष है। 11, 12 ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। और ये जो ड्रामा है, जू मिसल चलता रहता है, धीरे धीरे धीरे, इसलिए हमें लगता है जल्दी हो जाए बाबा ये समस्या, जल्दी इससे हल करो, लेकिन वो तो अपने स्पीड से चलेगा। ये ड्रामा एक खेल है, और खेल में हार जीत होती है, खेल में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि कभी कभी हमें रुकना भी पड़ता है, और बड़ी जीत पाने के लिए छोटी हार माननी भी पड़ती है। ये ड्रामा माँ है, क्यों नहीं है, ये ड्रामा टीचर है। हाँ, इस ड्रामा में मैं हीरो एक्टर हूँ, मेरा विशेष पार्ट है, और इस ये जो परिस्थिति है इसी को मैं ही हल कर सकता हूँ। ये ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती, ये ड्रामा विविधता पूर्ण है। इस ड्रामा में हमने माया को हराया हुआ है कल्प पहले, ये तो हो गई है पॉइंट। ड्रामा के जो कुछ रहस्य है वो रहस्य ही रहने वाले हैं, और यही इस ड्रामा की शोभा है। ये ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा फिक्स है, ड्रामा हर बीमारी की दवा है एक ही। ड्रामा एक ऐसा उत्तर है बाबा का जिससे सब सेटिस्फाई हो जाते हैं, और ड्रामा भगवान की ढाल है। ड्रामा इमरजेंसी गेट है, एग्जिस्ट। हाँ, ड्रामा फुल स्टॉप लगा देता है, बीती को भी बिंदी, सामने जो परिस्थिति है उनको भी। ड्रामा क्या करता है कि एक बल देता है आत्मा को पिछली बातें भूलने के लिए, और सामने जो परिस्थिति है उसको हल निकालने के लिए। तो प्रश्न क्या था कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन कौन सी जो ख्यालात है उसको समाप्त कर देता है। तो प्रश्न है अगला, तुम बच्चों की रेस कौन सी है, उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है। पांचवी तो ऑनर बनना हमारी रेस है, और बाप के साथ बुद्धियोग जुटा रहे हैं, और उससे क्या होगा फिर इस रेस से, इस रेस से पाप कटेंगे, अटल अखंड 21 जन्मों के लिए क्या बनेंगे, राज्य प्राप्त होगा। और एक रिकॉर्ड रखने के लिए बोला, कौन सा रिकॉर्ड रखना है, याद का रिकॉर्ड रखना है। फिर अगला प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया, उसकी निशानी क्या है। हाँ, भक्ति मार्ग में जो हमारी निशानी है, लक्ष्मी नारायण के जो चित्र है, वो भी चित्रकार कैसे बनाते हैं, हर्षित मुक्ता वाले बनाते हैं उनके नयनों से। और फिर शब्द के बारे में क्या कहा, शब्द कैसे होंगे उनके, मीठे शब्द होंगे। तो हमें बाप ने प्यार का सागर बनाया तो हमारी निशानी भी भक्ति में दिखाते हैं। जड़ मूर्ति भी कितनी मुस्कुराती हुई और कितनी भावनाओं से प्यार से भरपूर होती है, मुख से उनके ज्ञान रत्न निकलेंगे। इसलिए कई भक्तों निकलेंगे, कई जो नवदा भक्ति करने वाले हैं उनको वो भगवान के शब्द भी सुनाई देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बाप का है हम बच्चों का या दुनिया में, सॉरी हाँ, कौन सा एक कर्तव्य है जो बाप का ही है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, इस दुनिया में पीस स्थापन करना, ये कर्तव्य शिव बाबा का है, ना कि और किसी का। तो बाबा ने कहा इस बात को कैसे समझाना है, इस बात को कैसे समझाना है कि यह कर्तव्य शिव बाबा का है। एक शब्द है, जैसे आग, हाँ, भपके से क्या करना है, दुनिया को समझाना है कि ये जो शांति स्थापन करने वाला है वो आ चुका है। अच्छा, पवित्रता होगी तो ही शांति स्थापन कर सकेंगे, युक्ति से और भपके से। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
तो पहला स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले और सही राह पर चलाने वाले ही डबल लाइट है। सही राह दिखाने वाले ही डबल लाइट है। हाँ, लाइट डबल है। तो सही राह पर चलने वाले और सही राह दूसरों को दिखाने वाले ही सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। तो क्या होता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं और दूसरों को नहीं चला रहे, ये भी ठीक नहीं है। और हम चल नहीं रहे दूसरों को चला रहे तो फॉर्मूला लागू नहीं होगा, वो आगे जाएगा लेकिन हम पीछे रह जाएंगे ना। इस नहीं, वो निस्वार्थ सेवा नहीं है, पहले स्व की सेवा करनी पड़ेगी। स्व की सेवा भगवान ने जिसके लिए आपको रखा वो नहीं करके अगर दूसरों को बनाने लगे तो बाहर का आया खा गया घर का गाया गीत हो जाएगा। बाहर का आया खा गया घर का गाया गीत। हाँ, हम जिसके लिए भगवान के बने वो तो नहीं किया, और हमने ज्ञान सुना के दूसरों को अच्छा बना दिया। नहीं तो रास्ता पे चलते चलते सुनाओ, सही राह पे चल चल के सुनाओ, सिर्फ दूसरों को सुनाओ, खुद नहीं चलो, ऐसा नहीं, खुद भी चलो दूसरों को भी चलो। तो डबल तो क्या हो जाएंगे, तो सच्चे सच्चे लाइट हाउस बन जाएंगे। हमारे से कौन सी लाइट निकलेगी, तो सच्चाई के, सफाई के, प्रेम के, पवित्रता के, ये लाइट निकलेगी।
ओम शांति। जो भी होमवर्क मिला था कि सब टीम का स्लोगन ये करिए, उसके ऊपर मनन चिंतन करना, दिन भर मनन चिंतन करके जो भी है रात को लिखना, तो मैंने वैसा ही जो भी मनन चिंतन किया और जो लिखा है उसमें कोई गलत भी हो सकता है, ऐसा मेरे मनन चिंतन का ही। तो 11/12/2018 की स्लोगन है, उसमें स्लोगन था बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो बाप द्वारा दूसरे को भी बाप की याद आ जाए, यानी हम आप द्वारा दूसरे को बाप की याद आ जाए। उस पर हमने मनन चिंतन से ये किया कि हमारे द्वारे दूसरे को बाप की याद आ जाए, इस स्थिति के लिए हमें बहुत उच्च पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा ने कहा है कि आप बच्चे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, लेकिन उसके लिए हमें बाप समान बनना पड़ेगा। जैसे जो बाप का संकल्प है, जो बाप के बोल है और जो बाप के कर्म है वो हमारे हो, तब हम बाप समान बन सकते हैं। हमारे संकल्प में एक भी व्यर्थ न हो, हमारे बोल इतने मीठे हो जो हमारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले, हमारे मुख से दूसरे को सुख देने वाले शब्द निकले, और हमारे कार्य भी ऐसे हो जो हमारे संपर्क संबंध में आए उन्हें हमारे गुणों की खुशबू से उन्हें सुख मिले, तभी हम बाप समान बनकर हमारे द्वारा दूसरे को बाप की याद आए, और दूसरे बात में हम बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड हो जैसे उठते बैठते खाते पीते एक बाप दूसरा न कोई, यानी नस नस में बाप की याद समाई हुई हो। जैसे हम बच्चे गीत गाते हैं ना, तुम्ही संग खाऊ, तुम्ही संग खेलू, तुम्ही संग मिलन मनाऊ, तो ऐसी नहीं तुम्ही संग खाऊ, तो ऐसी कंबाइंड स्थिति हो, बाप और हम एक हो जाए, ऐसी स्थिति हमारे द्वारा दूसरे को बाप की याद आ जाए, ऐसी स्थिति रही तो।
ऑनेस्ट वह है, तीसरा है, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद हो, आराम पसंद नहीं। तो ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार वह बाबा का बच्चा है जो भगवान को पसंद हो और विश्व को पसंद हो, आराम को पसंद न हो और आराम हमें पसंद न हो। तो प्रभु पसंद हम कैसे बनेंगे, बाबा के पसंद कैसे बनेंगे? बाबा जो कहते हैं, बाबा ने जो आज्ञा दिया है, बाबा जी जो श्रीमत देते हैं, बाबा जो कहते हैं विश्व के विश्व रतन दादा को, बाबा पहले यज्ञ में एक ही भाई थे समर्पित, और बाबा का कितना लाडला बच्चा थे वो, क्योंकि बाबा मुरली के समय उनको रिक्शा लेके भेजते थे सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, अनाज लेने के, और बाबा के आज्ञा के पालन करके जाते थे सब्जी अनाज लाने के लिए, और सब्जी अनाज ला के और यज्ञ में रखते थे। तो दादा को संकल्प चलता था, क्या संकल्प चलता था कि अभी तो बाबा मुरली चला रहा होगा और ये हम रिक्शा लेके सब्जी लेके आ रहे हैं। तो उस समय उनको संकल्प आता था कि अभी जैसे हम बाबा के कमाऊपूत है, तो कमाऊपूत के लिए अगर घर में 10 बच्चा है, 4 बच्चा है, और सभी को घर के जो माता पिता है जो भोजन खिला रहा है, तो जो कमा के लाने वाला बच्चा उनके लिए तो पहले रखेगा ना, कि वो अभी आ रहा है थका हारा, उनके लिए रखेंगे। तो ऑनेस्ट हम ऐसे बनेंगे जो बाबा हमें कहे और हम करें, बाबा जहां भेजे वहां जाए, बाबा की जो मन हो और उस मन को हम पूरा करें। तो अगर बाबा जो खिलाए वो हम खाएं, अगर हम ऐसे प्रभु पसंद बन जाएंगे तो विश्व पसंद तो स्वतः ही बन जाएंगे। अगर थोड़े दिन, कुछ दिन लगेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद में विश्व पसंद, जैसे हमारे दादी जी को कितना बाबा ने रात में याद किया, तो विश्व पसंद तो हम बन ही जाएंगे। अगर विश्व पसंद बन जाएंगे तो हमारे जो हमारा जो प्यार हो गया है आराम से, वो आराम क्या हो जाएगा, तो हमसे दूर हो जाएगा और हम आराम से दूर हो जाएंगे। तीसरी
13/12/2018 का स्लोगन, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे। उसमें चिंतन से शांति दूत अर्थात शांति का संदेश देने वाले, अशांति स्थान को शांत बनाने वाले, अशांत व्यक्ति को भी शांति प्रदान करने वाले, और मनसा द्वारा दूर के व्यक्ति को स्थान को सकस देने वाले, शांति का दान देने वाले। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना पड़ेगा, तभी अशांत वायुमंडल व अशांत व्यक्ति को शांति प्रदान कर सकते है, तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे सकते है।
मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। तो वास्तव में देखा जाए कि बाबा ने हमें हर प्रकार की नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, कितना अच्छा हमारे बाबा के सबसे मीठा बच्चा कमलेश ने बताया ड्रामा के बारे में। तो ड्रामा की नॉलेज हमारे बुद्धि में जब आती है, नॉलेज होने से दुख में भी सुख दिखाई देता है। हमारी उंगली कट गई, चाहे कहीं हम गए, फ्रैक्चर हो गया, कुछ टूट गया, चोट लग गया, आराम करने को नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करने को मिलेगा, नहीं मिलता है। एक बार हम 3 दिन हमको बुखार हुआ था शायद, उंगली कट गई तो पट्टी बांध दो, फिर स्टिच लगा दो, फिर दवाई ले लो, दर्द कम हो जाएगी, फिर बाबा की याद कर सकते ना, अभी तो मुरली पढ़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, जो पेंडिंग काम है जो हमारी पुरुषार्थी वो हम कर सकते हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा, तो फिर से हमने बोल दिया, बाबा ने हमें ड्रामा का नॉलेज दे के, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुना के, दुख में भी सुख को सुख की अनुभूति करा दिया। और दुख इसीलिए अभी छोटा दुख आया है कि बड़ी दुख से हम टल गए हैं, मना मुक्त हो गए हैं। तो इसीलिए हमें देखना है कि भगवान जो है ना दुख हरता सुख करता है, तो हम मास्टर दुख हरता सुख करता बन, दुख में भी सुख की अनुभूति कर, दूसरों को भी अनुभूति कराएंगे, और खुद भी दुख को सुख में परिवर्तन कर दूसरों को भी सुख की अनुभूति करेंगे, यही सच्ची सेवा है।
15/12/2018 का स्लोगन, संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। तो संपूर्ण नष्टो मोहा अर्थात व्यक्ति वस्तु और वैभव में थोड़ा भी मोह न हो, सबसे न्यारे और एक बाप के प्यारे। हर कार्य में निमित्त भाव, कार्य करते समय मैं निमित्त हूँ करण करावनार बाबा है। इसमें मैपन का भी त्याग, जो भी सेवा कर रहे हैं उसी सेवा पर समय यही भाव हो कि बाबा ने मुझे उस सेवा के लिए निमित्त बनाया है। करण करावनार बाप है, मेरा कुछ भी नहीं तो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग, तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा।
आज का है दूसरों को करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों को करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। हमको देखना है कि बाबा ने कहे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वयं को देखो, खुद को देखो और खुदा को देखो। अगर खुद को देख नहीं पाए, खुदा को नहीं देख पाए, अगर दूसरों को देखेंगे तो क्या होगा? बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। अगर बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो हमारे जीवन में जो कमी कमजोर है उसको हम करेक्शन नहीं कर सकेंगे। करेक्शन नहीं कर सकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारी अंदर को कमी कमजोरी को करेक्शन करना है, ना कि दूसरों के अंदर को। दादी ने कभी दूसरों को करेक्शन नहीं दिया, पहले अपने ऊपर अटेंशन रखा। मम्मा ने पहले अपने ऊपर अटेंशन रखा, अपने जीवन से दूसरों को ज्ञान दिया। अगर किसी को बताना भी होता था, किसी को समझाना भी होता था तो हल्का होके, साक्षी होके बता दिया और हल्के हो गए। दूसरों को सुधारने के हिसाब से नहीं। अगर ब्राह्मण लाइफ में अगर किसी को हम सुधारने के तरीके सोच के अगर जाते कि हम इसको ठीक कर देंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आप जरूर बिगड़ेंगे। इसलिए दूसरों को करेक्शन करने के बजाय अगर बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, कोई भी हमारे अंदर की कमी कमजोरी जो भी बात है पोता में अगर बाबा को देते हैं, तो बाबा से अगर हमारी कनेक्शन ठीक है तो हम सही में अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, बाबा से वरदान ले सकते हैं और वरदान की अनुभूति बन सकते हैं। और दूसरों के सुधारने के, दूसरों को अपने लाइफ के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा करेक्शन करने के माध्यम बन सकते हैं, ऑप्शन। बाबा ने खास करके बोला है कि फरिश्ता बनना है देवता बनने से पहले, और फरिश्ता बनने के लिए इसने ये किया, उसने ये किया, अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। फिर ब्रह्मा बाबा को याद किया, मम्मा को याद किया, दादी को याद किया कि बाबा इतने अच्छे थे, बाबा के जीवन से ये मिलता था, बाबा से बात करने जाते थे तो भूल जाते थे, तो चलो बाबा में शिव बाबा आता था, जगदम्बा जगदम्बा थी, लेकिन दादी तो आपके सामने सैंपल थी, आप जैसे ही ब्राह्मण परिवार के थी तो जैसे दादी ने किया वैसे दादी जैसे करना है। दादी का क्या था स्लोगन की कर्मातीत बनना है, तो वैसे हमें भी स्लोगन याद रखने के, हमें भी क्या करना है तो कर्मातीत बनना है। और गुजरात के लिए बोला, गुजरात क्या है तो मधुबन का कमरा है, तो मधुबन का कमरा अर्थात हम भी बन सकते हैं मधुबन का कमरा, बैठे नहीं दूसरों के लिए, कहीं जाएंगे तो हमारे से मधुबन की याद है ना लोगों को। हम कहीं फरिश्ता बन के साक्षात्कार तो करा सकते हैं, यहाँ बैठे नहीं, यहाँ बैठने के लिए बाबा नहीं रखा है, बाबा पुरुषार्थ करने के लिए रखा है, बाबा तपस्या करने के लिए है, बाबा रग रग हड्डी हड्डी को सुहा करने के लिए रखा है, सिर्फ बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए रखा है। ओम शांति।